हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अध्यैवमे विशतो मानसराज हंसा, प्राणां प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम्, रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु, वैगीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा, नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरुष्ठात्, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात्, अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे, वेदसांगपद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा, पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतकथाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 एंड 25। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ सतुचरण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी ऋषियों को भगवान की कथा श्रवण कराने का शुभारंभ करते हुए कहते हैं, एकदा धनुरुद्यम विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः शान्त क्षुदितस्त्रिषितो भृशं जलाशयम् अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः शान्त क्षुदितस्त्रिषितो भृशं जलाशयम् अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः शान्त क्षुदितस्त्रिषितो भृशं जलाशयम् अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। शब्दात् एकदा धनुरुद्यम्य, एकदा मनम एक बार, धनुर धनुष तथा बाण उद्यम्य दृढ़ता पूर्वक धारण करके, विचरण मृगयाम वने, विचरण मतलब घूमते हुए, मृगयाम यानी शिकार के लिए, वने यानी जंगल में, मृगान अनुगत श्रांत, मृगान यानी हिरणों को अनुगत पीछा करते हुए, श्रांत बहुत थक गए, और क्षुदितस त्रिषितो भृशम, क्षुदी कहते हैं भूख को, त्रिषिता अर्थात प्यास, भूख और प्यासा, भृशम अत्यधिक उनको भूख और प्यास लगी, जलाशयम अचक्षण, जलाशयम यानी जल के आगार को या तालाब को, अचक्षण यानी खोजने के लिए, खोज करते हुए, प्रविवेश तमाश्रमम, प्रविवेश प्रवेश किया तम उस प्रसिद्ध आश्रम यानी शमीक ऋषि की कुटिया में। ददर्श मुनिम आसीनम, ददर्श फिर उन्होंने देखा क्या, मुनिम मुनि को आसीनम आसन लगाते हुए, शांतम मिलित लोचनम शांतम यानी चुपचाप शांत होकर, मिलित अर्थात बंद किए हुए, लोचनम यानी आंखें। अनुवाद, एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, समुचित परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है, अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो। परमेश्वर अपने भक्त को कभी नहीं भूलता, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के माध्यम बने थे, यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता, तो भगवान द्वारा जनहिताय भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित थके भूखे तथा प्यासे न होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कही कही होती। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया, अतएव यह उपक्रम एकदा से प्रारंभ होता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भागवतम अध्याय पहला सिकंद अध्याय 18, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्याम। हमने देखा कि सोनिक आदि जितने भी ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से याचना कर रहे हैं कि कृपया हमें कृष्ण कथा का दान दीजिए, क्योंकि कृष्ण कथा ही जीवन है। यदि कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा हमारे जीवन का और कोई लाभ नहीं है। वास्तव में भक्तों, इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हो, इसलिए नहीं कि मनुष्य जीवन में भोग भोगने की सुविधाएं होती हैं, क्योंकि भोग जितना देवताओं की योनि में भोगा जा सकता है उतना तो मनुष्य की योनि में प्राप्त भी नहीं होता। लेकिन देवता लोग इसलिए तरसते हैं क्योंकि सिर्फ मनुष्य की योनि है जिसमें हम भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, इसलिए देवता भगवान से याचना करते हैं कि हमें भी मनुष्य बनाइए और भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान कीजिए। परंतु हम कितने मूर्ख हैं, मनुष्य होकर भी भगवान की कथाओं में इतनी आसक्ति नहीं होती हमारी। लेकिन यहाँ पर ये ऋषि मुनि वो सारे सूत गोस्वामी से मिलकर यहाँ निवेदन करते हैं कि हमें भगवत कथा के विषय में श्रवण कराइए। तो इतना सुनने के बाद महाराज सॉरी सूत गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं आपके अनुग्रह से भगवान की कथाओं को श्रवण कराऊंगा। आम ही पृष्ठो मणो भगवत ये भगवत फिर मैं आप लोगों को भगवान की, क्योंकि आप तो स्वयं ऋषि हैं और स्वयं प्रकाशमान हैं, मैं आपको बताऊंगा। परंतु अचक्ष आत्मावगमोत्र यावत जितना मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, जितनी मुझ पर कृपा है उसके अनुसार बताऊंगा। और नभ पतंत्यात् मसमं पतंत्री जिस प्रकार आकाश में उड़ते हुए पक्षी उतनी ही उड़ान बढ़ सकते हैं जितनी की उनकी क्षमता है, तथा समम विष्णु गतिम विपश्यता उसी तरह उतना ही जितना जितना जो विद्वान होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार भगवत कथाओं को बताते हैं, तो मैं भी जितनी मुझ पर शुद्ध भक्तों की कृपा है उसके अनुसार मैं भी भगवत कथा का भी प्रारंभ करता हूँ। इतना कहने के बाद आज सूत गोस्वामी मूल कथा को प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं एकदा ये एक समय की बात है। यहाँ से वह श्रीमद् भागवतम महापुराण का उद्घाटन कर रहे हैं कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण करने का हम जैसे पतित जीवों को अवसर मिला। वो एक दिन था जब धनुरुद्यम यानी कि धनुष बाण को उठा के दृढ़ता से वो निकले। क्यों निकले? विचरण यानी कि घूम रहे थे मृगायाम वने जंगल में घूम रहे थे शिकार करने के लिए। ये महाराजा परीक्षित जो कि बहुत ही पवित्र राजा थे जिन्होंने कलयुग को दमन कर लिया था, एक बार क्योंकि क्षत्रिय लोगों को शिकार करने के लिए वन में जाना होता है ताकि इससे उनके अंदर जो होता है वो युद्ध में किस तरह से जीवों की हत्या होती है ना, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उनको जाना होता है। तो एक बार वो गए थे जंगल में शिकार करने के लिए और मृगान अनुगत है शांत और मृगान अनुगत यानी मृगों का, क्योंकि हिरन बहुत तेज तेज दौड़ता है और घोड़ा जो है उसके पीछे पीछे दौड़ाते हैं ना जब ये क्षत्रिय लोग, तो हिरन और भी तेज, क्योंकि हिरन जो है वो गायब हो जाता है, कहीं छुप जाता है, वापस से घोड़े को पीछे पीछे, तो ऐसे किया था। मृगान अनुगत श्रांत बहुत बहुत मृगों के पीछे पीछे वो दौड़ते और श्रांत यानी बहुत ज्यादा थक गए और थकने के साथ साथ क्षुधितस त्रिषितो वृषम। क्षुधि कहते हैं भूख को, त्रिषित यानी प्यास को, वृषम यानी अत्यधिक इतना थक गए कि उनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगने लगी। वास्तव में भक्तों कहीं किसी को मन में ये बात आती है, शंका उत्पन्न होती है कि ये तो कितने भगवान के महान भक्त थे, इनको क्या जरूरत थी यहां भूख प्यास के मारे किसी शमी ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे याचना करने की। उनको तो है ना अपने जो इनके साथ शिकारी वगैरह उनके साथ जो राजा के वजीर वगैरह होंगे उनके साथ मिलकर या किसी तरह से अपने वापस से चले जाना चाहिए वन में। एक एक शमी ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उनके गले में इनको सर्प डालने की क्या जरूरत थी। वो तो भगवान के भक्त थे, उनको ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर अनुवाद में बताया है तात्पर्य में कि भगवान के भक्त कभी भी इतने विचलित नहीं होते हैं शारीरिक आवश्यकताओं के कारण। भगवान के भक्तों को भगवान की कृपा के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए उनकी उन्नति के लिए भक्ति में उनकी प्रगति के लिए उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कोई ना कोई ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि उनका भौतिक बंधन भौतिक जो आसक्ति है या संसार में जो इतना ज्यादा लिप्त हो जाते ना तो उससे वो बाहर निकले। अब क्योंकि महाराजा परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे लेकिन राजपाट में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे। वो भगवान के भक्त तो थे लेकिन साथ साथ में अपनी प्रजा को प्रजा के विषय में देखना, अब राजा हैं तो राजा के तो करोड़ों कर्तव्य होते हैं, उन सारे के अंदर इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि भगवान की कथाओं के लिए भगवान की भक्ति के लिए वो समय नहीं निकाल पाते थे। अब भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त जो है वो मुझसे दूर होता जा रहा है तो कुछ ऐसा करो ना उसके लिए कि वो पुनः मेरे पास आने मुझसे प्रेम करना। वास्तव में ऐसा भी नहीं है, अगर और भी भगवान की कृपा को नजदीक से देखा जाए ना तो ऐसा भी नहीं है कि महाराजा परीक्षित जो थे वो भगवान से या भक्ति से दूर हो रहे थे। वास्तव में भगवान को किसी न किसी को माध्यम बनाना था। हम जैसे पतित जीव जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करते और भौतिक वस्तुओं के अंदर इतने ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो हम जैसे पतित जीवों को के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त का एक माध्यम उनको बनाया ताकि उनके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी उनको ज्ञान देंगे और हम जैसे पतित जीवों को श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो जब बहुत ज्यादा भूख और प्यास उनको लगी, जलाशयम अचक्षण, फिर वो जलाशय को ढूंढ रहे थे कि कहीं से पानी का कोई तालाब दिखे, कोई पानी का कोई जलाशय प्राप्त हो, तो वो उनको मिला नहीं। अचानक उनकी नजर एक कुटिया पे पड़ी, सामने एक आश्रम था, तो फिर प्रविवेश तमाश्रम, फिर वो उस बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम में प्रवेश किए। वो किसका आश्रम था, अब इनका नाम याद रखिएगा, शमी ऋषि, ठीक है, शमी ऋषि का आश्रम था और उसके अंदर वो जाकर प्रवेश किए और अंदर जाके क्या देखा, ददर्श मुनिमासीनम, मुनि जो थे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा एक मुनि बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है, शांतम मीलितलोचनम, एकदम शांत होकर नेत्र मूंद करके बैठा हुआ है। तो महाराजा परीक्षित ने जब देखा कि ये बहुत ही शांति से मुनि बैठा हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया। वास्तव में भक्तों, श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस तात्पर्य को इतना सुंदर बताया है कि मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अत्यधिक लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं उसमें उदासीनता उत्पन्न हो, है ना, कि भगवान कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं, जीवन में कोई ऐसी उथल पुथल मच जाती है, कोई ऐसा जीवन के अंदर ऐसा कोई इनकलाब आ जाता है कि हर एक वस्तु से उदासीनता होने लगती है। और भगवान जो है वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए करता है। भक्त भले संसार में भौतिक सांसारिकता के में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाए और भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते हैं। इसलिए वो कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त जो है वो सांसारिकता से वैराग लेने के लिए बाध्य हो जाता है। अब महाराजा परीक्षित जो है वो भौतिक जगत में लीन है, अपने राज्य में अपने सारे कार्यों कार्यकलापों में बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन भगवान अब इन सब से उनको वैराग्य करा के अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक योजना बना रहे हैं। और इस योजना के तहत आज उनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी है और वो ऋषि शमीक ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। यहीं से उद्घाटन होना है श्रीमद् भागवतम महापुराण का। यही एक दृष्टांत है जो निमित्त बना है श्रीमद् भागवतम महापुराण को प्रारंभ करने का। श्रीमद् प्रभुपाद जी ने कहा, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम बने थे, उसी प्रकार हालांकि उस टाइम पर अर्जुन भगवान के साथ थे, जहाँ पर याहार कृष्ण ताहार नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहाँ पर माया का कोई अधिकार नहीं, फिर भी अर्जुन को परिवार का स्नेह और मोह प्राप्त हुआ और उस मोह के उत्पन्न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया। ये भगवान की योजना थी कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो। जिस समय वो युद्ध क्षेत्र में आया था तब उसके मन में मोह नहीं था। जब उसने अपने अपोजिट के सारे जितने भी शत्रु थे या फिर दूसरा जो टीम था उसको भी देखा, तब भी उसके मन में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान को बोला, सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्छुत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। बीच में खड़ा करके देखा तो भगवान ने कहा, इसको तो ऐसा ना हो कि बस देख के फौरन से लड़ाई करना शुरू कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण उसको भीष्म और द्रोण के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भगवान श्री कृष्ण भीष्म और द्रोण को सामने फिंगर लिखा के दिखाते, ये ने तुम्हारे गुरु महाराज, इससे युद्ध करना है, ये तुम्हारे दादाश्री, इससे युद्ध करना है, करोगे ना युद्ध, इसी से युद्ध, तुम्हें देखना था ना, देखो इनको इसी से। और देख के उसी टाइम अर्जुन का जो है ना मोह उत्पन्न हो गया। वास्तव में ये भगवान की योजना थी, अर्जुन को मोह उत्पन्न न होता तो फिर हमें श्रीमद् भगवत गीता कैसे मिलती। और आज अगर परीक्षित महाराज भूख और प्यास से इतने ज्यादा व्याकुल न होते तो वो कभी किसी ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार न करते। और हम जो पतित जीव हैं वो श्रीमद् भागवतम महापुराण से वंचित रह जाते, लेकिन भगवान हम जैसे पतित जीवों पर कृपा कराने के लिए अपने किसी न किसी भक्त के साथ कोई न कोई योजना करते हैं, ताकि हमको भगवान को स्मरण करने का, भगवान की लीलाओं को, भगवान के वचनों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।